चार पद्माकर सैन्य रचना कर गुरु द्रोण अग्रभाग में खड़े हो गए। रात्रि के अविराम युद्ध के उपरांत भी थके हुए सेनाओं के योद्धागण पुनः आमने सामने खड़े हो गए। स्थान स्थान पर इंगुदी का तेल जिनमें समाप्त हो गया है, ऐसे मशालों से केवल कटु धूम बाहर निकल रहा था। अर्जुन के नायकत्व में पांडव सेना कुरुओं से भिड़ गई। कुरुक्षेत्र पर सेनाएं जैसे तैसे क्षीण होती जा रही थी, वैसे ही वैसे सरस्वती और दृष्टद्वती वीरों के उष्ण रक्त का पान कर फूलती जा रही थी। समस्त युद्धभूमि पर रक्त मांस और धूल का ढेर लग गया था। दक्षिण की ओर ढाल होने के कारण प्रतिदिन वह धीरे धीरे सरकता हुआ दक्षिण की ओर संचित होता जा रहा था। धधकते हुए चिताओं के प्रतिबिंब दृष्टद्वती के रक्तमय पात्र में विभत्स दिखाई दे रहे थे। युद्धभूमि पर न पांडवों का राज्य था न कुरुओं का। निर्दय विकराल मृत्यु का वहां का अनभिषिक्त सम्राट हो गया था। जिसको चाहता उसे मुक्त मन से आलिंगन में भरकर अपने दिग्विजयी के घोड़े दौड़ा रहा था। दोपहर तक गुरुद्रोण पूरी शक्ति से लड़े, परंतु अचानक कोई चिल्ला पड़ा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। वास्तविकता यह थी कि मालव देश के राजा इंद्रवर्मा का अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था। सत्यासत्य की परीक्षा करने के लिए द्रोण समस्त समरांगण में घूमते हुए अपने रथ को अंत में सत्यप्रिय युधिष्ठिर के रथ के पास लाए। युधिष्ठिर, सभी लोग आक्रोश कर रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। सचमुच ही मेरा प्रिय अश्व गत प्राण हो गया है क्या? कहो, गुरुद्रोण की गुरु दक्षिणा के रूप में ही कम से कम यह बताओ कि सत्य क्या है। तुम्हारी सत्यप्रियता पर मुझे विश्वास है। गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया है यह सत्य है, परंतु वह मनुष्य था या हाथी था यह मुझे ज्ञात नहीं। युधिष्ठिर जीवन में पहली बार असत्य बोला। दूसरा वाक्य अस्पष्ट मुख में केवल वह बोला था। हाथ में लगा धनुष फेंक कर पुत्र वियोग के दुख से व्याकुल द्रोण रथ में ही पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। 90 वर्ष की अवस्था वाले द्रोण मन के वृद्ध की जीवन पर से श्रद्धा उठ गई। आंखें बंद कर देह की अंधेरी गुफा में आत्मा की ज्योति कैसे प्रकाशित होती है देखने के लिए उन्होंने मन के नेत्र खोले। सभी आरक्त नेत्रों वाला दृष्टद्युम्न अपने रथ से नीचे उतरा, जैसे वृक्ष पर बिजली गिर पड़ी हो, कमर से खड्ग खींच कर दौड़ा। पांडव रुको रुको कहकर चिल्लाते हुए पीछे दौड़ ही रहे थे कि वह एक ही छलांग में द्रोण के रथ पर चढ़ गया। कोई कुछ समझ पाए इससे पहले ही उसने द्रोण के मस्तक पर के अश्व के श्वेत घनी पूंछ वाले विपुल केश को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और एक प्रहार में ही उनका धड़ मस्तक से अलग कर दिया। फिर हस्तस्थ मस्तक को दोनों सेनाओं के बीच सीधा धूल में फेंक दिया। सभी ने इस हृदय विदारक यात्रा से आंखें बंद कर ली। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम का दिव्य संदेश सतत पाठ 60 वर्षों तक हस्तिनापुर के सैकड़ों युवकों को सिखाने वाले शुभ्र कमल जैसा तेजस्वी मुख कमल रक्त में सनी हुई धूल में सन गया। प्रत्येक मन पर प्रेम का राज्य करने वाला गुरुश्रेष्ठ धूल में पड़ा हुआ था। अंत में वह दिन उदित हो गया जबकि पग पग पर कर्ण का तिरस्कार करने वाले द्रोण का भी उदय मृत्यु ने तिरस्कार कर दिया। अपार सेना में गरजता हुआ युद्ध द्रोण मारे गए सुनते ही अपने आप बंद हो गया। दोनों सेनाओं के बहुत से योद्धा अवरुद्ध कंठों से उनके रथ के चारों ओर एकत्रित हो गए। अश्वत्थामा ने अश्वों का सिंचन करते हुए अपने पिता का मस्तक धड़ से के साथ रखा। साक्षात धनुर्वेद शांत हो गया था। जीवन भर द्रोण द्वारा ठुकराया गया कर्ण भी द्रवित हो गया। आगे बढ़कर उनके अचेतन चरणों को हाथ से स्पर्श करते समय उसकी आंखें छलछलाते हुए अश्रुओं ने द्रोण की अमर आत्मा से कहा होगा, गुरुदेव, जीवन भर आप मुझे कभी पहचान नहीं पाए। कुछ भी न कहकर इसने अत्यंत स्नेह से अश्वत्थामा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया, सब कुछ भूल कर हार्दिक प्रेम से। पिता के दयनीय अंत से वाउखलाए हुए अश्वत्थामा ने नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा के नारायण शास्त्र से सहस्त्रों पांडव सैनिक जल भून गए। अंत में मैंने स्वयं ही आगे बढ़कर उस दिव्य शस्त्र को शांत किया। संध्या समय भीषण छाया कुरुक्षेत्र पर प्रत्येक शिविर के आसपास घनीभूत हो रही थी। गुरु द्रोण की जलती हुई चिता को देखकर दुर्योधन का हृदय जल रहा था। शोक विह्वल अश्वत्थामा का दुख कितना गहन गंभीर होगा इसका विचार करने का और गुरुपुत्र को धैर्य बधाने का भी ध्यान उसे नहीं रहा। पैर बढ़ाता हुआ कलाई पर से सरकते हुए उत्तरी को बार बार झटके देता हुआ जैसे आहत हाथी नदी के पात्र में घुसता है, वैसे ही वह द्वार पर टंगे जालीदार पटल को दूर हटाता हुआ अश्वत्थामा के शिविर में घुसा। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, यही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी मनोदशा ऐसी हो गई थी जैसे बिना विचार किए किसी घने अरण्य में आग लगाने वाला मनुष्य उस धधकते दावानल में स्वयं ही फंस जाए। वह कुछ भी नहीं कह रहा था। यह देखकर पिता के धवल वस्त्र में छिपाया हुआ अपना मुख जरा भी ऊपर न उठाते हुए अश्वत्थामा ही उससे कातर स्वर में बोला, राजन, अपने पिता के क्रूर वृद्ध वध का इतना ही क्रूर प्रतिशोध मैं लूंगा। कल के युद्ध के लिए प्रखर विक्रमवान दिग्विजयी सूर्य भक्त कर्ण को ही सेनापति पद दो। उसके मन में कर्ण के मित्र प्रेम का जो निर्जर था वह कैसे सूख सकता था। दुर्योधन उसके शिविर से बाहर निकला और सीधा कर्ण के शिविर में गया। मध्य रात्रि तक वह कर्ण के शिविर में ही रहा। नख कटे हुए व्याघ्र की तरह वह इधर उधर चक्कर काटता हुआ पुनः पुनः कर्ण से कह रहा था, अंगराज, पितामह और गुरुद्रोण दोनों कुरुओं को अपार सेना का सेनापति पद विभूषित करें, यह मैंने सच्चे मन से कभी नहीं चाहा था। मुझे विश्वास है कि जिस कुरु सेना ने तुम्हारे सेनापतित्व के अधीन एक बार दिग्विजय का डिंडिम बजा दिया था वह कल्पना कुरुक्षेत्र को भी पराक्रांत कर देगी। कर्ण, अर्घदान के लिए तुम्हारी अंजलि से सत्यनिष्ठा से गंगा के पवित्र जल की लक्ष लक्ष बूंदों का अर्घदान सूर्य किरणों में चमकता हुआ पड़ा होगा। कल तो लक्ष लक्ष पांडव सैनिक भी मृत होकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए तुम्हारे चरणों में आ पड़ेंगे। अर्जुन का नीला शरीर तुम्हारे जयद्रथ के सामने खड़ा होते ही काला पड़ जाएगा, जिसका नाम सुनते ही मेरी संपूर्ण देह तप्त लौहरस बन जाती है, और जिसने निर्दयता से मेरे बंधुओं का वध किया है उस क्रूर भीम का शरीर तुम्हारे अमोघ बाणों से उसके आरक्त नेत्रों जैसा ही रक्तवर्णी हो जाएगा। तुम्हारे संकुचित होते गए चरणों की ओर देखने के लिए बारंबार नीचे झुकने वाली दृष्टि की गर्दन सेनापति के रूप में कल तुम्हारा पराक्रम देखकर हमेशा के लिए झुकी रह जाएगी। तुम्हारे वायुजित के खड़े हुए दोनों कानों को देखकर उस समय नकुल सहदेव दोनों भाइयों को ऐसा भान होगा जैसे प्रभंजन आ गया हो और कलह के समस्त सूत्र किनारे कर खड़ा होकर संचालित करने वाला यह मथुरा का इंद्रजालिक व काला ग्वाला प्राणदान की याचना करने अर्जुन का रथ छोड़कर याचक रूप में तुम्हारे रथ की ओर दीन होकर दौड़ेगा। कर्ण, कल के सेनापति तुम ही रहोगे, मित्र तुम ही रहोगे, वह कह रहा था जैसे धूरे से निकला हुआ रथचक्र लड़खड़ाता हुआ इधर उधर दौड़ता है वैसे ही। परंतु कर्ण शिविर के जालीदार गवाक्ष से सामने दृश्य ज्योति के तट पर दिखाई देने वाली धधकती हुई गुरु द्रोण की चिता की ओर देखता हुआ एकदम चुप बैठा था। दुर्योधन का कोई शब्द उसके कानों में नहीं घुस रहा था, घुस भी रहा था तो क्षण भर को भी वहां स्थिर नहीं हो रहा था। अंत में उसने इतना ही कहा, राजन, मुझे विजय दिलाने के लिए मैं अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। मुझे सारथी से सम्राट बनाने वाले सन्मित्र, संपूर्ण स्नेह भाव से तुम्हारे साचर में बिताया हुआ यह जीवन सम्रांगण में भी तुम्हारे सहकार्य के लिए ही सार्थक होगा। जाओ, निद्रा और वचन कभी अपूर्ण नहीं रहने चाहिए। निद्रा का आवरण ओढ़कर रात ढलने लगी, मशालों के शरीर अपने ही तिरस्कार से जलने लगे। 5. 16वें दिन का प्रातःकाल सुवर्ण किरण रूपी पारिजात पुष्पों की सुगंध कुरुक्षेत्र पर छिड़कता हुआ उदित हो रहा था। शुक्ला द्वितीया का दिन था वह। सभी देवताओं ने असुरों के विनाश के लिए जैसे स्कंद का अभिषेक किया था वैसे ही समस्त कुरु सैन्य को एकत्र कर दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति पद के लिए अभिषेक किया। जिस मूल स्थान पर युद्ध प्रारंभ हुआ था वह स्थान अब 3 कोस उत्तर में रह गया था। सम्रांगण प्रतिदिन बदलते जा रहे थे, दक्षिण की ओर सरकते जा रहे थे। क्षौम वेष्टित औदुम्बर के आसन पर बैठे हुए कर्ण की दाई कलाई पर दुर्योधन ने निशिगंधा के धवल पुष्पों की सुगंधी माला कसकर बांध दी थी तथा अपनी कमर से सुतीक्ष्ण खड्ग निकालकर उसको अंतरिक्ष में घुमाते हुए उसने चिल्लाकर घोषणा की, कौरव सेनानायक दिग्विजयी अंगराज कर्ण, जयतु जयतु जयतु। विविध रंगों के सुगंध पुष्प अपने सेनानायक पर बरसाते हुए कौरव सैनिक क्षण भर को भीष्म और द्रोण का पतन भी भूल गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी सेनापति के दमकते हुए मुख की एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाने लगे। पुरोहित तथा बंदीजनों ने उनके सुनहले घुंघराले बालों में सुगंधित तिल डाले। मुहूर्त की घटिका प्रदर्शित करने वाला छिद्रमय जाल पात्र जल से भरी हुई नाद में डुब ध्वनि करता हुआ जैसे ही डूबा, दुर्योधन ने तबक में रखा हुआ सेनापति का विख्यात किरीट उसके मस्तक पर रखने के लिए उठाया। हाथ में उसको बरजते हुए कौनते होकर भी राधे के रूप में स्वयं को धन्य मानने वाले उस महारथी ने पार्श्व में खड़े अपने पुत्र विश्वसेन की ओर साभिप्राय देखा। विश्वसेन ने तुरंत ही एक तबक सविनय पिता के सम्मुख रख दिया। उस पर पड़ा हुआ रेशमी वस्त्र हल्के हाथ से दूर कर सूर्यपुत्र ने उस तबक में रखे हुए एक दूसरे स्वर्णिम किरीट को दुर्योधन उसे हाथ लगाए उससे पहले ही स्वयं उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वह किरीट ठीक मेरे किरीट की बनावट जैसा ही था। पूर्व क्षितिज पर आकाश का सम्राट सविता अपनी किरणों के सहस्त्र घोड़ी दौड़ाता हुआ आकर खड़ा हो गया। तित्तिर, चक्रवाक, सारंग, धनुच्छड़ी, वन्य शुक और चकोर पक्षियों ने उसका स्वागत करने के लिए घोंसले छोड़कर आकाश में उड़ाने भरी। वो उसकी बूंदों के मौक्तिक तृणपर्णों पर चमकने लगे। वायु के झोंकों के साथ क्षण भर में ही वे कुरुक्षेत्र की विशाल हृदय भूमि में लीन होने लगे। समस्त चराचर नव चैतन्य से नृत्य करने लगा। सेनापति बने हुए कर्ण ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी सैन्य रचना के लिए सुविधाजनक स्थान चुना। कौरव सेना एक विशाल मगर का आकार धारण कर खड़ी हुई। उस मगर के नेत्र भाग के स्थान शकुनी और उलूक ने ग्रहण कर लिए थे। मस्तक का स्थान संतप्त अश्वत्थामा ने स्वीकार किया था। बाएं पैर के स्थान पर कृतवर्मा और दाएं पैर के स्थान पर गौतम खड़ा हो गया था। पिछले पैर के स्थान पर मद्रराज शल्य खड़ा था तथा इस मगर के मध्य में लाखों कुरुओं के घेरे में दुर्योधन को छिपाकर स्वयं कर्ण मुखाग्र पर खड़ा था। उसका सुवर्ण मंडित विजय धनुष सूर्य की किरणों से चमकता हुआ पांडव सेना से कह रहा था, मैं आज बाण फेंकूंगा ही नहीं, फेंकूंगा केवल धधकती हुई तप्त किरणें। उसके रथ के शुभ्र घोड़े कान खड़े कर कुछ क्षणों में ही लगने वाले बलगांवों के झटके को स्वीकार करने के लिए जबड़े तैयार रखकर उतावली से पैरों के कुरों से कुरुक्षेत्र को कुरेद रहे थे। उसके सबसे ऊंचे रथ जैत्र पर लगी हुई उल्का जैसी श्वेत पताकाएं श्रृंखला दंड का चिन्ह मस्तक पर शाम से धारण कर फरफराने वाले काषाय वर्ण के अतलसी ध्वज को चारों ओर से घेर कर हवा के झोंकों में झूम रही थी। छोटी छोटी सुवर्ण घंटियां इशा दंड के साथ हिलती डुलती हुई मधुर कंकड़ित ध्वनि कर रही थी। पट्टिश, शूल, तोमर, चक्र, वरूत, गदा, शतघ्नि, खड्ग, त्रिशूल, भाले तथा परशु इनसे रथ का पृष्ठभाग ठसाठस भरा हुआ था। असंख्य प्रकार के बाणों को उद्रस्त करने के लिए शताधिक तुणीर अपर्याप्त सिद्ध हो रहे थे। संपूर्ण रथ चकत्ते वाले व्याघ्र चर्म से आच्छादित था। मगर के मध्य स्थान से दुर्योधन ने एक विशिष्ट शंख फूंक कर जैसे ही चढ़ाई का संकेत किया, कर्ण ने अपना पुष्प मालाओं से सुशोभित विजय धनुष ऊंचा कर घुमाया फिराया। घोड़ों के बलगांवों की तरह पुष्ट दिखाई देने वाले रक्तमय धमनियों को तान कर फुलाते हुए अपना हिरण्य गर्भ शंख उसने इतनी जोर से फूका कि सम्रांगण के आसपास लालच से इकट्ठे हुए तित्तिर, गृद्ध, वागुद्ध जैसे क्रूर माक्ष भक्षी भी भयभीत होकर आकाश में उड़ गए। हाथियों के देह के रोम खड़े हो गए। निश्चय ही वह शंखनाद नहीं था, मानो अपने अवमानित राजमन की युगों युगों से संचित उष्ण निश्वास को ही यह प्रथम कौंतेय भुजंग की तरह फेंक रहा था। आरोह! लौत्राण के भीतर अपने बलशाली भुजा को बहुत ऊंचा उठाकर उसने कुरु सैन्य को गगन भेदी स्वर में आज्ञा दी। कुरु सेना का विशाल मगर कर्ण रूपी जबड़ा फैलाकर पांडवों को निगलने के लिए आगे रेंगने लगा। कलकल करता हुआ गरजने वाला विक्षिप्त बना हुआ अर्जुन के सेनापतित्व में पांडव सेना अर्धचंद्र का आकार धारण कर आगे बढ़ने लगी। उसकी वलकाएं मेरे हाथ में थी। अर्जुन के उस नंदी घोष रथ के दाएं हाथ पर दृष्टद्युम्न खड़ा था। बाएं हाथ पर एक हाथी पर आरूढ़ होकर राजपथ गजपथ का नेतृत्व करने के लिए लाल नेत्रों वाला भीम आवेश से आगे बढ़ रहा था। पार्श्व में युधिष्ठिर खड़ा था। कर्ण को सामने देखकर उसका मन भय से थरथर कांप रहा था। हाथ उठाकर अर्जुन ने क्षण भर अपनी सेना की चंद्रकला को थोड़ा पीछे किया और देवदत्त शंख फूंक कर एकदम जोर से आगे बढ़ा। रथ के घोड़े दौड़ाते समय मेरे मन में विचार आया कि अर्जुन को यह ज्ञात नहीं कि वह किसे लड़ रहा है। कर्ण को यह ज्ञात है, इसलिए उनके युद्ध का स्वरूप कितना छलनामय विचित्र हो गया था। सामने से शुभ्र घोड़ों के उछलते हुए रथ में सिंहनाद करते हुए आने वाले कर्ण को देखकर पांडव सेना की समझ में नहीं आया कि पर्वत शिखर पर तपने वाला सूर्य आकाश में है या सामने स्थित सोने से संपूर्ण मढ़े हुए चमकते रथ में उसका मुख किरणों में चमचमाने वाले सुवर्ण कुंभ की तरह दमक रहा था। इतना पहले कभी नहीं दमका था। पुष्ट कंधों पर झूलते हुए घुंघराले बालों की सघन लटे रथ के चक्र का धक्का लगते ही क्षण भर को कंधे से अलग हो रही थी, पुनः कंधे पर झूल रही थी। वह वृष स्कंद आ रहा था अरण्य पवन का विकराल रूप धारण कर, ज्वार के समय विक्षुब्ध महासागर की तरह, जो सामने दिखाई दे उसे जलाकर भस्म करने के लिए उतावले ज्वालामुखी की तरह। उसकी नीली आंखें घूम घूम कर कपिध्वज को ढूंढ रही थी। आज मैंने एक बुद्धिमानी की थी, सदैव सामने की सेना को स्पष्ट दिखाई दे इस ढंग से लगा हुआ फरफराने वाला अपने रथ का ध्वज उलट कर ऐसा लगा दिया था कि उस पर अंकित चिन्ह पांडव सेना को दिखाई देता रहे। दोनों सेनाएं गरजती हुई एक दूसरे से भिड़ गई। कपिध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, यह देखकर क्षण भर उलझन में पड़े हुए राधे ने अपना रथ एकदम हमारे गजधर की ओर मोड़ दिया। वह विष से बुझे हुए असंख्य बाण मृग नक्षत्र की वर्षा की तरह इस प्रकार अनवरत फेंक रहा था कि पहले एक प्रहर में ही उसने गजधर के पैर उखाड़ दिए। शरीर में विष का असर होते ही हाथी अत्यधिक उन्मत्त होकर लौटे और हजारों पांडव सैनिकों को ही पैरों तले रौंदते हुए जिधर रास्ता मिला उधर ही भागने लगे। गत प्राण होकर धराशायी होते हुए किसी तरह टिक कर जीवित रहने के लिए छटपटाने वाले योद्धाओं को कुचलने लगे। कर्ण द्वारा किए जाने वाले हाथियों के क्रूर संहार को रोकने के लिए क्रुद्ध होकर दौड़ने वाले भीम को अश्वत्थामा ने बीच में ही रोक लिया। उनका संग्राम मानो दो क्रुद्ध व्याघ्रों का पंजा फाड़ युद्ध था। सात्यकी बिंद अनुबिंद से भिड़ गया था। दृष्टद्युम्न कृपाचार्य को घेर रहा था। श्रुतकीर्ति मद्रराज पर टूट पड़ा। सहदेव और दुशासन एक दूसरे पर बाण वर्षा कर रहे थे। दुर्योधन मगर का केंद्र स्थान छोड़कर अपना रथ जैसे ही एकदम युधिष्ठिर के पास लाया, युधिष्ठिर की सुरक्षा के लिए मैंने अर्जुन का रथ उसके पास ले जाकर भिड़ा दिया। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, वैसे ही वैसे धूल के बादल आकाशमंडल में गिरकर छाने लगे। हाथियों के निरंतर चित्कार से शस्त्रों की खनखनाहट भी सुनाई नहीं पड़ती थी। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह देखकर बौखलाए हुए कर्ण ने पांचाल और मत्स्य के पथक अपने जैतरथ के नीचे एकदम रौद डाले। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज से ऊपर की ओर सरक रहा था, वैसे ही वैसे उसका रथ और अधिक गतिमान होता जा रहा था। कभी शूल, कभी तोमर, कभी गदा, इनके हाथ बदलते समय वह कानों के निचले भाग में संचित श्वेत बिंदु को पोष डालने के लिए भी क्षण भर रुकता। सूर्य सिर पर आया। उसी समय भीम ने समर्थ योद्धा क्षेम धूर्ति को रथ से नीचे गिरा दिया। सन सप्तकों से भिड़े हुए अर्जुन ने दंड और दंडधर इन दोनों राजाओं को कंठ स्नान करा दिया, इसलिए अश्वत्थामा झल्लाकर उसके ऊपर टूट पड़ा। जिस पांचाल पथक में कर्ण घुसा था, वहां अब स्पष्ट रूप से संकुल युद्ध प्रारंभ हो गया था। जो कोई सामने दिखाई देता, उससे पूछ पूछ कर लड़ने को ललकारता हुआ प्रत्येक योद्धा ऐसा भान रहित हो गया था जैसे युद्ध की मदिरा पीकर उन्मत्त हो गया हो। मत्स्य और पांचालों के वीर पथक प्रमुख कर्ण के सामने धड़ाधड़ गिर रहे थे। यह देखकर उसके अवरुद्ध करने के लिए मैं अपने पांचजन्य शंख से विशिष्ट स्वर में सांकेतिक बोल निकालकर नकुल से बार बार कह रहा था, नकुल नकुल, कर्ण की ओर रथ मोड़ो। उस घनघोर कोलाहल में मेरा संकेत नकुल को आधे घड़ी बाद सुनाई दिया। दो प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद उसने अपना सैन्य दल अपने पीछे लिए हुए मत्स्यों के पथक में प्रवेश किया और आगे बढ़कर सीधे कर्ण से टक्कर ली। परंतु वह जिस सेनानायक से टकराया था, वह कोई शीतल शरीर का प्रपात नहीं था, वह था विद्युत का आघात। वह नकुल के बाण सहज प्रत्यावर्तित करता हुआ उसको पुनः पुनः रथहीन करके हंसता हुआ उसकी दुर्गति देखने लगा। अंत में अपना ऊंचा रथ उसके रथ से भिड़ाते हुए निशस्त्र किए हुए नकुल से वह बोला, जाओ अपने बड़े भाई उस अर्जुन को मेरे सम्मुख भेज दो, तुम्हारे लिए इसीलिए तुम्हें यह प्राणदान दे रहा हूँ। लज्जित नकुल सिर झुकाकर उसके सामने से जब लौटा, तब वह स्वयं भी यह नहीं जानता था कि उसकी माद्री माता ने पति के साथ सती होते समय कुंती देवी के हाथों उसका जो जीवन पुष्प दिया था, उसको वह प्रथम कौनते अग्रज होने के नाते सुरक्षित रख रहा है। संपूर्ण देह के रक्त कर्ण युद्ध की सर्वग्राही बड़वाग्नि में जलकर छार होने का समय आने पर भी वह राधेय राजमाता कुंती देवी को दिए गए वचन का निष्ठा के साथ पालन कर रहा था। संध्या के समय युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध ने चित्रराज को कंठ स्नान करा दिया। जिस समय संध्याकाल की तिथि स्वामिकीर्ण कुरुक्षेत्र के चारों ओर ऊंचे वृक्षों की लंबी परछाइयां डाल रही थी, उसी समय मैंने अर्जुन का नंदी घोष रथ पहले ही बार कर्ण के सामने जैतरथ के सम्मुख किया। एक दूसरे को सामने देखते हुए भड़क उठे। उन दोनों की मुखाकृतियां इस तरह संतप्त हो गईं जैसे हवा को पाकर अग्नि भड़क उठती है। वे दोनों ही जोर से एक दूसरे पर चिल्लाए। उनकी चिल्लाहटों से घबराए हुए आसपास के हाथी भी भाग खड़े हुए। एक दूसरे का लक्ष्य भेद करते हुए उन्होंने अपने अपने भारी धनुषों से अनवरत ऐसे बाण फेंके कि क्षण भर में ही आकाश का इस प्रकार आच्छादित हो गया जैसे मृग नक्षत्र में मेघों से आच्छादित हो जाता है। घड़ी भर तक उनके अमोघ वेगवान नादमय बाण बड़ी भयंकरता से एक दूसरे से टकराते रहे। उनके लौ अग्रभागों से चिंगारियां बरस रही थी। रात होने से पूर्व ही संध्या समय होते हुए भी उन चिंगारियों से आकाश का भव्य गुंबद तारक खचित सा लग रहा था। उन चिंगारियों में कर्ण का सारथी सत्यसेन दग्ध हो गया। अर्जुन के बाणों से वह मृत हो गया। कर्ण अर्जुन की बाण वर्षा से आच्छादित हुआ उस दिन का आकाश कुरुक्षेत्र पर छत्र चामर डोलाने वाला आकाश फिर निरभ्र हुआ ही नहीं, क्योंकि रात्रि रूपी मायावी योद्धा ने अंधकार की काली किरणों के बाण फेंक कर उनके बाणों को भी क्षण भर में आच्छादित कर दिया। शुक्ला द्वितीया का भी वह विकट 16वां दिन भी जैसे तैसे समाप्त हुआ। छह, रात घने अंधकार के असीम आवरणों को कुरुक्षेत्र के चारों ओर लपेटने लगी। दिशाओं में स्याह काला अंधकार छाया हुआ था। हाँ, घड़ी भर के लिए दृष्टिज्योति के शांत और नीरव तट पर तड़तड़ करती हुई धधकती सत्यसेन की चिता ने उस अंधकार को अवश्य प्रकाशित कर दिया था। सत्यसेन उसके रथ की बलगाएं संभालने वाला केवल सारथी नहीं था, केवल पत्नी का भाई नहीं था, गुरुओं का केवल एकनिष्ठ सेवक नहीं था, बल्कि कर्ण के राजकीय जीवन में अनिवार्य परिस्थितियों के कारण भ्रम में डालने वाले अनेक समर प्रसंगों के अवसर पर उसको सावधानी का संकेत करने वाला छोटा नगाड़ा था। सचेत हितैषी था, इसलिए देह का भान भूल कर वह सत्यसेन की चिता की ओर देखता हुआ एकाकी दृष्टि के तट पर बैठा हुआ था। अंधकार के किट्ट काले हाथी को अविरत चाटने वाले सत्यसेन की चिता की पीली अग्नि ज्वालाओं को देखते समय उसे प्रत्येक लपट में सत्यसेन ही दिखाई दे रहा था। रात्रि में असमय कंधे पर घड़ा लेकर गंगा के नीरव तीर पर मिलने वाला सत्यसेन कवच कुंडल दान कर अनेक मर्मभेदी अभिशापों के मरण तुल्य भारी गठरी पीठ पर लाद कर वचनों का मुक्त दान करता हुआ साक्षात तेज की खान होने पर भी केवल अतिसाधारण जीवन बिताता हुआ वह यहाँ तक आ पहुँचा था। अपने पास सुरक्षित रखी हुई अंतिम विशेष वैजयंती शक्ति भी घटोत्कच पर फेंक कर वह अब पूर्ण रूप से रिक्त हो चुका था, एकाकी हो गया था। परंतु इस एकाकीपन में भी उसके उत्साही कुलीन वीर मन की साधना और सूर्य आराधना से प्रज्वलित दिव्य आत्मिक तेज की एक अपराजित और अशरण उर्मी उसे सदैव धैर्य बधाई आई थी। यह उर्मी ही उसका संपूर्ण जीवन था। इसी एक आत्मिक उर्मी के बल पर वह चाँप से छूटे हुए बाण की तरह छटपटाता हुआ सदैव आगे बढ़ता गया था। मैं किसी महान तेज से संबंधित हूँ, ऐसे अंततम में कोई चुपचाप दिव्य प्रेरणा दे रहा था। इस दुर्लभ प्रतीति का एक तार उसका जीवन संगीत रचता गया था। यह प्रतीति अन्य किसी को भी नहीं थी। सचमुच ही उसको समझ पाना अत्यंत दुष्कर था। उसके जीवन के दो स्पष्ट भाग थे, सूर्य केंद्र से गूढ़ प्रतीति के सूक्ष्म धागों से बधा हुआ उसका उच्चात्मा, आसपास के सामाजिक जगत से दिन प्रतिदिन बधा हुआ उसका शरीर और मन। कभी कभी इन दो भागों का अतर्क और अकल्पित मिश्रण हो जाता। उसी से उसका जीवन इतना संघर्षमय, इतना भ्रांतिपूर्ण और इतना गूढ़ तथा रहस्यमय लगने लगता। उसका सारथी सत्यसेन भी अब कभी समाप्त न होने वाली अनंत यात्रा पर चला गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि महारथी का आधे से अधिक यश उसके कुशल सारथी पर अवलंबित होता है। वह जिस ओर ले जाए वही उसकी दिशा होती है, वही गति होती है। उसका सदैव के सारथी के चले जाने के कारण अब तक पांडवों के चतुरंग दल में मुक्त रूप से भ्रमण करने वाला व्याघ्र चर्मांकित अजेय जैत्ररथ अब कुरुक्षेत्र पर जमे हुए रक्त मांस के दलदल में किसी भी समय फंस सकता था। शून्य मन से पलक तक न मारता हुआ सत्यसेन की धधकती चिता की ओर एकटक देखता हुआ वह दृष्टिज्योति के निस्तब्ध तट पर अकेला ही खड़ा था। ग्लानि से भरा हुआ बधिर आत्मविस्मृति या इंद्रियातीत स्वयं में क्षितिज के भारी दूसरी कगारों को भेद कर पार गया हुआ। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात था कि उसका पराक्रम महान था, त्याग महान था, लोकप्रियता महान थी और इन सबसे अधिक उसकी सूर्य आराधना महान थी। साधना से उसने जो शुचिता प्राप्त की थी वह महान थी, परंतु पांचाली की धवल पद पवित्रता पर उसने भरी सभा में जो कीचड़ उछाली थी उसमें वह सबका सब बुरी तरह सन गया था। सभी जन कह रहे थे कि दुर्योधन ने कर्ण का जीवन इस प्रकार अनुकंपनीय कर दिया है, पर किसी को भी विदित नहीं था कि पांचाली के कारण ही उसका जीवन वास्तव में अनुकंपनीय हो गया था। मानवता का अपमान एक बार क्षमा किया जा सकता है, परंतु जिस स्त्री की कोख से मानवता जन्म लेती है उस स्त्रीत्व का इतना निर्घृण अपमान कभी क्षम्य नहीं होता। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में स्त्रीत्व लज्जित होता हो वह समाज और वह राष्ट्र विनाश के गहरे खड्डे के कगार पर अपने आप ही पहुंच जाता है। फिर भी पांडव सेना उसके विक्रम से भयभीत है, यह भी मैं जानता था, क्योंकि पांचाली के स्त्रीत्व का उसने जो अपमान किया था उसे राजमाता कुंती देवी के स्त्रीत्व का गौरव करके कुछ अंशों में उसने धो डाला था। कुंती से उसका जो संबंध था वह यदि उसने संसार के सामने खोल कर रख दिया होता तो पांडव कौरवों के विरुद्ध खड़े ही न हुए होते। पांचाली की विडंबना का प्रतिशोध लेने के लिए भी कौरवों के विरुद्ध खड़े न हुए होते। अपने पुत्र का जन्म के समय ही अश्व नदी में त्याग करने वाली उस माता की कीर्ति को वास्तव में यदि किसी ने संभाला था तो कर्ण ने ही। पांचाली के पतिव्रत का अक्षम्य अपमान उसके हाथों से हो गया है, यह प्रतीति कर्ण ने अपनी दिव्य आत्मा से जीवन भर कभी पृथक नहीं होने दी थी। मुझे ही उसने पांचाली के लिए विनम्र संदेश दिया था, संभव हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। हिरण्यमयी द्वारा कथित पांचाली की कर्ण के प्रति मोह कामना तथा 6 जनों के बीच 2-2 माह के विभाजन की बात उसने विशाली के मुख से सुनी नहीं थी क्या? फिर भी वह कौरवों के पक्ष की ओर से समझ बूझ कर समरांगण में उतरा था, प्राणों का मूल्य चुकाने वाला था। एक प्रकार से वह भी पांचाली के प्रति विशेष प्रकार का आदर नहीं था क्या? और इसीलिए मैं जानता था कि ऐसे इस कर्ण का शौर्य पांडवों के लिए भीतिदायक था। कुछ निश्चय कर कर्ण पाषाण पर से उठा। उसने सहज अंधकार से दिखाई न देने वाले पूर्व क्षितिज की ओर क्षण भर एकटक देखा। एक दीर्घ निश्वास छोड़कर वह अपने शरीर की ओर शांतिपूर्वक निद्राधीन होने के लिए मुड़ा। इतने में ही एक हृदय विदारक आर्त चीख दुष्टदति के पात्र सहित आसपास के सघन अंधकार को चीर गई। भैया, उसे सुनकर सत्यसेन की चिता की ज्वालाएं भी क्षण भर को कांप उठी। वह वृशाली थी, सत्यसेन की बहन, कर्ण की पत्नी। सत्यसेन के पतन की सूचना अश्वत्थामा ने अश्वसाद भेजकर उसके पास हस्तिनापुर में पहुंचाई थी। सुनते ही किसी की राह न देकर सारथ्य कर्म में निपुण वह सारथी स्त्री अपने भाई के अंतिम दर्शनों के लिए जिसका बांध टूट गया है, ऐसी नदी की तरह स्वयं रथ लेकर वायु गति से हस्तिनापुर में से चल दी थी। वह सत्यसेन की चिता की ओर तेजी से ऐसे दौड़ रही थी जैसे देह पर पहने हुए वस्त्रों में आग लग गई हो। उसको बिना देखे ही केवल उसकी चीख सुनकर ही सहज ही उसको पहचान लेने वाले कर्ण की स्मृतियों का सरोवर कदाचित एकदम विक्षुब्ध हो गया। एक ही विचार का आवर्त उसके मस्तक में चक्कर काटता हुआ शायद भ्रमण कर रहा था, सूतपुत्र, सूतपुत्र। कर्ण की अवाक निश्चलता, निःशब्द निस्तब्धता, सब कुछ वृशाली को देखते ही क्षण भर में न जाने कहाँ चली गई। आवेग से बढ़ते हुए तेजी से दौड़ आने वाली भान रहित अपनी प्रिय पत्नी को उसने अपनी सशक्त भुजाओं के दृढ़ बंधन में ले लिया। न जाने कितनी विविध भावनाओं का कंपन उस आलिंगन में समाया था। महाराज, महाराज करती हुई वह अपना कुंभ जैसा गोल मुख उसके विशाल वक्षस्थल पर धड़ाधड़ पटकने लगी। वास्तविक अर्थ में वह कर्ण पत्नी थी, कुटुंब वत्सल थी, स्नेहमयी थी, औरों के लिए व्याकुल हृदया थी, त्यागी थी। श्रम शांत मस्तक को उसने कर्ण के विशाल वक्षस्थल पर टेक दिया। विचित्र मानसिक स्थिति में उनके इस प्रगाढ़ आलिंगन को देखने के लिए आसपास छाए हुए काले से अंधकार ने भी आंखें खोल ली थी। दृष्टदशी के गति के मंद लहरें भी उमड़ रही थी। कुरुक्षेत्र का समरांगण सजग हो रहा था, परंतु फिर भी वह कुछ भी नहीं कह रहा था। विशाली की बड़ी बड़ी आंखों से निरंतर झरती हुई अश्रुधारा उसके शीतल शांत क्षितिज के उस पार गए हुए मन को पुनः पुनः प्रज्वलित कर रही थी। चिता के लपटों में क्षण भर चमक कर पुनः अदृश्य होने वाले उन दोनों के शिरोभाग जैसे एक हो गए थे, एक दूसरे में समा गए थे, लीन हो गए थे, एक रूप हो गए थे। कर्ण की स्फुरित होती हुई रक्तमय धमनियों का स्पंदन शायद वृशाली को अबोध सांत्वना दे रहा था। कल या तो अर्जुन इस सर्वोदार कुरुक्षेत्र का सदैव के लिए आलिंगन करेगा, या फिर तुम्हारा पति सूर्यबिंब के सुयोग्य सन्मार्ग को स्वीकार करेगा। जीवन भर निष्प्रिय साथ निभाने वाली अपनी प्रिय पत्नी को अपने जैत्ररथ में बैठाकर उसने स्वयं हस्तिनापुर में कुरुओं के राजभवन में पहुंचाया।